वंदना हुई। अब मैं आत्मा राधा की वंदना में एक छंद और पढ़ रहा हूँ। हारिणीम दोष कोषाणं तारिणीम भववार्धे कारिणीम संपदां वंदे वृंदावन विहारिणीम। हारिणीम दोष कोषाणं शास्त्र शब्द तो मुझसे जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं उस पथ से बहुत दूर फिसला हुआ व्यक्ति। राजकीय विद्यालय में अध्यापन करता रहा और वारदक के मुनिवृत्ति नाम अब कुछ कभी कभी भागवत इत्यादि ग्रंथों का अवलोकन कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा सुना है आप सब लोगों के सज्जनों के कृपा से। कुछ हिंदी में ही मैं तो बोल पाऊंगा। अभी सभी विद्वानों ने शब्दानाम धातुनाम अनेकार्थ इस बात से इस कैवल्य शब्द के अनेक अर्थ किए। मोक्ष अर्थ ब्रज में तो चल ही नहीं सकता। ब्रज में तो कैवल्य का केवल एक अर्थ है प्रेम। यहां तो प्रेमा भक्ति द्वारा ही हम श्रीमद् भागवत के तत्व का उसका सार उसका रस ग्रहण कर सकते। श्रीमद् भागवत के भी पक्ष में सभी लोगों ने ये कहा है कि यहाँ केवल भक्ति ही प्रधान है और भक्ति बिना प्रेम के संभव नहीं। भक्ति बिना प्रेम के संभव नहीं और प्रेम बिना त्याग के संभव। हम उस प्रभु के लिए सर्वस्व समर्पण की जब भावना ले आवें अपने अंदर तभी प्रेम होता है और वह प्रेम उस ईश्वर श्री कृष्ण के लिए ही होना संभव है। वह श्री कृष्ण ही उस प्रेम का परम पात्र। आज हमारा सारा साहित्य चाहे वो भागवत से संबंधित हो चाहे वो ब्रजभाषा से संबंधित हो वह प्रेम का ही प्रतिपादन करता है। हमारे श्री कृष्ण के चरित्र से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं चाहे वो देवकी वसुदेव हो चाहे नंद यशोदा हो चाहे ग्वाल बाल हो चाहे गाय बछड़े हो चाहे गोपी गोपाल हो और चाहे कुब्जा हो या रुक्मणी हो सबका श्री कृष्ण से संबंध केवल प्रेम के कारण हुआ है। वह प्रेम भक्ति के कारण हुआ है। अगर उनमें वह प्रेम नहीं होता तो वह उन श्री कृष्ण प्राप्ति करने में सर्वथा असमर्थ है। आज हम सब लोग भी उसे केवल प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं, केवल भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं और वही मेरी समझ में कैवल्य है। दो एक छंद में हिंदी के ब्रजभाषा के मुख्य रूप से लिखता रहा हूं। वेदों के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद संस्कृत या संस्कृत के बाद प्राकृत और उन सब का निचोड़ है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो घोर सांकरी को चोर चोरन में सिरमोर और नहीं धोता नंद नौ नौ लाख खूंटे को। जिसके 9 लाख खूंटे थे नंद बाबा के उसका बेटा और नहीं धोता नंद 9 लाख खूंटे को और बेद विद विप्रन को प्यारो पतियारो यार और बैठा भक्त चित्तन के आसन अनूठे को। के काम दह डारे धीठ दही दही और दही जलाना काम दह डारे धीठ मोह मही ढा रहे हो, मोह तो मही माने धरती में और मही माने मठा, मोह मही ढा रहे और कहबो कहा लोनी के खसूते को, क्रोध घट फूटे हटे माया पट दीखे तब विश्व के रंगीलेन में रंग है कलूते को, विश्व के रंगीलेन में घोर सागरी को चोर चोरन में सिर मोर और नहीं धोता नंद, नौ नौ लाख खूंटे को वेद विद विप्रन को प्यारो पतियारो यार और बैठा भक्त चित्तन के आसन अनूठे को, काम दह डारे ढीठ मोह मह ढारे और कहबो कहा लोभ की लोनी के खसूते को, क्रोध घट फूटे हटे माया पट दीखे तब विश्व के रंगीलेन में रंग है कलूते। वह कलुता श्री कृष्ण भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही प्राप्य है। एक छोटा सा दोहा और कहूंगा मैं, कबऊ खल बांधे, कभी उन भगवान ने बड़े बड़े खलों को दुष्टों को बांधा, कबऊ खल बांधे बंधे अब ऊखल में, कबऊ खल बांधे बंधे अब ऊखल में आ, और मुकत चाहत जो आपनी, हे प्रभु अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हैं तो करो नाम निज जाप, तो आप अब अपने ही नाम का जाप करें तभी आपकी मुक्ति होगी। तो जो नाम का जाप उस भगवान की मुक्ति करा सकता है वह हमारी आपकी क्यों नहीं कराएगा। इसलिए मैं तो केवल के अर्थ में केवल प्रेम को, उस श्री कृष्ण के प्रेम को ही समझता हूँ।
श्री कृष्ण गोपाल वर्येण, कृष्ण गोपाल वर्येण शास्त्र धीमता व्याख्यानम प्रस्तुतम सम्यक, व्याख्यानम प्रस्तुतम सम्यक राधायाम।
गर्भ सम्भूतम् श्रीकृष्णम् रसरूपिणम् यशोदा, गर्भ सम्भूतम् श्रीकृष्णम् रसरूपिणम् सर्वावतार सारम् हि वन्दे प्रेमैक प्राप्तये, जयति श्रीवल्लभार्यो जयति श्रीविठ्ठल प्रभु श्रीमान् पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति। प्रातस्मरणीयाः गुरुचरणाः तदनु अध्यक्ष पद मलं कुर्वाणा, न केवलं ज्ञान वेदांत नारायण स्वामिनः अपितु भक्त वेदांत नारायण स्वामिनः। यतो हि वेदांत शास्त्रम द्विविधम् ज्ञानात्मकम् भक्त्यात्मकञ्च, तत्र एते अध्यक्ष पदम अलं कुर्वाणाः महानुभावः साधुभूषणाः साधवः भक्त वेदांत नारायणेति नामना विख्याताः, मधुपुरीयां भक्तिरसं प्लावयन्ति प्रचारयन्ति प्रसारयन्ति च। तदनु अस्माकं मथुरा जनपदस्य शोभां वर्धयन्तः संचालक महोदयाः परम विद्वांसः, तदनु विद्यमानाः वरीयांशो विद्वांसः, श्री भागवत रस पिपासवः
वैष्णव जनाः मातरो भगिन्यश्च। साम्प्रतं सर्ववेदांत सारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनम् इति विषयमवलम्ब्य द्वित्राः शब्दाः श्रीमतां सविधे प्रस्तूयन्ते। स्वामिनाम् अधुनैव आदेशः सम्प्राप्तः कि संस्कृतभाषाया आग्रहं त्यक्त्वा हिन्दीभाषायामेव स्वाभिप्राया विनिवेद्य, अतः संस्कृतभाषा तो विलम्य हिन्दीभाषायामेव हृदगतान् भावान् प्रकटीकरोमीति क्षन्तव्यं विद्वद्भिः। देखिए इस श्लोक में बताया सर्व वेदांत सारम। पहले वेदांत शब्द के वेद का विचार करें। वेद शब्द बनने के बाद वेदांत शब्द का निर्माण हुआ। प्रथमं वेदः ततो वेदांत शब्द। तो वेद का सार क्या है? तो भगवान ब्रह्म काष्ठेन श्री रणवीक्ष मनीषया तदध्यवश्यत सूतस्थो रतरात्मन यतो भवेत। भगवान द्वितीय स्कंद का श्लोक है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान से वेद को पढ़कर उसका अपनी बुद्धि से तीन बार विचार किया। त्रिवारम अन्वीक्ष विचार्य मनीषया बुद्धिया। उसका निष्कर्ष क्या निकाला? तदध्यवश्यत कूटस्थः, कूटस्थः ब्रह्मा तत् अध्यवश्यत इस निश्चितवान। यह निश्चय किया कि वेदों का तात्पर्य क्या है? कि रतरात्मन यतो भवेत, यतः यस्मात् कारणात् आत्मनि सर्वेषाम आत्मनि रसात्मके श्री कृष्णे रतिर् भवेत इति सर्ववेदार्थः। संपूर्ण वेद का अर्थ है भगवान में प्रेम हो जाना। और जब नारद जी ने भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, और सुनाते समय ब्रह्मा जी ने एक बात कही, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। मनुष्यों इस समय भक्ति से विमुख हैं, तो विमुख मनुष्यों को किसी भी येन केन प्रकारेण भक्ति का उदय हो उनके हृदय में, ऐसा वक्ता को संकल्प करके ही श्रीमद् भागवत का प्रवचन प्रारंभ करना चाहिए। तो ये मैंने सामान्य बात कही। अब वेदा नाम अंता वेदांता, अंतो नाम चरमावयव। जैसे अपना चरमावयव अंतिम अवयव सिर है, ऐसे वेदों को उपनिषदों को लिखा श्रुति सिरो भी, अथवा अंत शब्द सिद्धांत वाचक। वेदानाम अंतः वेदानाम सिद्धांतः वेदांतः। तो सर्व वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है। भागवत कैसे बना? कोई कहता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, हम तो कहते हैं भगवान एव भागवतम। भगवान और भागवत ये दो चीज नहीं है। अवतार दशा में भगवान कल्याण करते हैं, तो अनवतार दशा में श्री भागवत कल्याण करता है। इसलिए वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य और वेद्य भगवान है, यह बात सिद्ध हुई। अब आइए व्यास जी 17 पुराण और महाभारत चार वेदों का प्रभेद करते हुए भी चिंतित हैं। तो व्यास चिंता विनाशार्थ नारद जी ने भागवत निर्माण का उपदेश दिया, व्यास जी ने समाधि लगाई, तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम। यहाँ पूर्वम पाठ श्री वल्लभाचार्य जी ने स्वीकार न करके पूर्णम ऐसा पाठ स्वीकार किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव आत्मानं तत्त्वं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। यहाँ तक प्रश्न के आकार की शैली को बताया। आपने पूर्ण श्री कृष्ण का दर्शन किया और उसके बाद माया का दर्शन किया। कृष्ण माया और जीव तीन वस्तु पहले दर्शन का विषय बने। तो आइए, जब ईश्वर, उसके बाद माया, उसके बाद जीव। अब जीव ईश्वर से कैसे मिले? जब तक माया से युद्ध न किया जाए तब तक मायापति से मिलना असंभव है। तो माया से तरने का अब कौन उपाय? ये व्यास भागवत निर्माण से पहले ही विचार कर रहा है, गंगा के तट पर बैठा हुआ। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि, यद्यपि प्रकृति से वो पर है, परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाधिपद्यते। तो अब भगवान ने देखा, व्यास जी ने, यदि हम ज्ञान को पकड़े तो ज्ञान तो पुरुष है, वो माया स्त्री के चक्र में फंस सकता है। तो सोचा, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यह चरित अनुपा। तो आपने चौथी भक्ति को देखा, तो भक्ति को देखा, अनर्थो पसनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वाम चक्रे सात्वत संगीतम। आपने इस भागवत का नाम भक्त संगीता है। तो अब मैं सर्व वेदांत सारम, सर्व वेदांत का सार प्रतिपाद्य वेद्य भगवान और भगवान की भक्ति दोनों ही हैं। ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, यद्यपि ब्रह्म शब्द ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते, ये तीनों ही प्रकार भेदेन ईश्वर वाचक शब्द हैं। हमारे बसंत शास्त्री ने आत्मा शब्द का अर्थ राधिका किया, तो वास्तव शास्त्र संगत है। ब्रह्म शब्द का अर्थ वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा, अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम्। जहां भी ब्रह्म शब्द आवे उसका अर्थ कृष्ण मानना। और आत्मा रामोप्यरी रमत, आत्माराम भगवान का नाम कैसे पड़ा? तो आत्मा तो राधिका तस्य तया तो रमणादसौ आत्मा राम इति प्रोक्ता मुनि भी तत्वदर्शी हुई। इसलिए यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का एकत्व ही उसका लक्षण माने असाधारण धर्म है। लक्षणम नाम असाधारणो धर्म। क्यों? आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो क्या अंश अंश नो रभेदात। अंश और अंशी का अभेद होता है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव अंश है वो अंशी है, इसलिए एकत्व ही उनका साधारण धर्म है। वस्तु अद्वितीयम, वो अद्वितीय वस्तु है जिसको ध्यान में भागवत में कहा जाता है, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम सरस्त सरस्त निवद्ध नीव विलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्त नताप वर्गम अखिलो दारंग किशोराकृति। वो किशोराकृति जो कृष्ण है वही एक वस्तु है जिसको अभी पूर्व हमारे शुभानंद जी ने कहा था कि वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, वास्तव अन्यत्र वास्तवस्य अवेद्यत्वम और अवास्तवस्य च वेद्यत्वम, अत्र श्री भागवते वास्तवम वस्तु वेद्यम, वास्तव वस्तु वेद्य है, इसलिए वस्तु शब्द से केवल श्री कृष्ण ही का निशा लक्ष्य करना चाहिए। तो ब्रह्म शब्द से कृष्ण और आत्मा शब्द से राधिका, उनका जो ऐक्य है रास में राधा कृष्ण का मिलन ही ये असाधारण धर्मता भागवत का स्वरूप बताया गया। इसमें कृष्ण और राधा के तत्व के सिवाय दूसरा कोई तत्व है नहीं, वही अद्वितीय वस्तु है। अब जरा सन्निष्ठम की व्याख्या करके मैं अपने प्रवचन को समापन की तरफ ले जा रहा हूँ। तन्निष्ठम, तन्निष्ठम का क्या अर्थ होगा? तो सच साच इति तौ, सच कृष्ण सा इति राधिका, सच साच इति तौ पुमान स्त्रिया, स्त्रिया सह एक देशे पुमाने विशिष्यति। तो सच साच इति तौ राधा कृष्ण ताभ्यम राधा हृदये कृष्ण प्रेमो, कृष्ण हृदय राधा प्रेमो। वो प्रेम कहाँ रहता है? राधा जी के हृदय में कृष्ण प्रेम रहता है और कृष्ण के हृदय में राधा प्रेम रहता है। उन दोनों के हृदय से निष्ठम तन्निष्ठम ताभ्याम नीति निःसृत्य वहां से निकला, ताभ्याम राधा कृष्णाभ्याम निःसृत्य निर्गत्य वैष्णवानाम असमादृशाम वैष्णवानाम परिपालनाय निःसृतम सत तिष्ठति निष्ठम, निःसृतम सत तिष्ठति जगति इति निष्ठम। वह प्रेम राधा कृष्ण से निकलकर राधा के हृदय में जो रसात्मक कृष्ण है, कृष्ण के हृदय में जो रसात्मिका राधा है, वही तो प्रेमई के रूपणी राधा है और प्रेमई के रूप भगवान श्री कृष्ण है। वो जगत में क्यों आया? जगत में यूं आया कि वैष्णवों का जीवन ही प्रेम पर जी रहे हैं, यदि कृष्ण प्रेम न हो तो वैष्णवों का जीवन ही भार रूप हो जाए, इसलिए तन्निष्ठम कैवल्य प्रयोजनम। देखिए आइए अब इसको बना दीजिए, कर्म ज्ञानाद्यभिलाष रहिता, कर्म ज्ञानाद्यभिलाष रहिता केवला भक्ता, ये शाम भक्तानां कृते नापि कर्मापेक्षा नापि ज्ञानापेक्षा, कर्म ज्ञानाद्यपेक्षा रहिता केवला भक्ताः केवला, तेषां भावः कैवल्यम। हम तो भाव में ही चयन करेंगे। भाव कैसे कहते हैं? प्रेमणस्तु प्रथम अवस्था भाव इत्यभिधीयते, प्रेम की जो प्रथम अवस्था है उसी का नाम भाव है। वह जो राधा हृदय से निश्चित भाव और वह जो कृष्ण हृदय से निश्चित भाव है वही एकम प्रयोजनम यस्य, साथ में हम परमत खंडन पूर्वकम स्वमतम न स्थापयामी, अभी तो परमत मंडन पूर्वकम स्वमतम स्थापयामी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान और मोक्ष कोई चीज नहीं है। भगवान ने गीता में कहा नहीं ज्ञान है इन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान तो बड़ा ऊंचा चीज है। इस भागवत में दो बातें हैं, एक वाच्य और एक प्रयोजन। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनका वाच्य क्या है और प्रयोजन क्या है? तो वाच्य है ज्ञान और प्रयोजन है मुक्ति। तो उनके मत में हम ये कहेंगे अपि शब्द लगा दो, क्या हानि होगी? दूसरे के मत के मंडल में ही मस्ती लो। कैवल्यम अपि एकम प्रयोजनम यच्च। कैवल्यम माने मोक्षः, अपि अपि लगा दो आगे, कैवल्यम अपि। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती अपि शब्द को लगा रहे हैं। तो कैवल्यम अपि एकम प्रयोजनम यच्च। कैवल्यम एव एकम प्रयोजनम न कहकर हम कह रहे हैं कैवल्यम अपि एकम प्रयोजनम यच्च। इस प्रकार ज्ञान में वाच्यता और मुक्ति में प्रयोजनता, ये दोनों ही अक्षुण्य बनी रहे तो हमारा क्या हानि करेंगे? हम ज्ञान का और मोक्ष का खंडन करें। अरे राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पराधाता अपि विस्मित परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्त कथने। ये करके तो हमने मंडन किया, अब हम भक्ति का स्थापन कैसे करें? भक्ति का स्थापन करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। मैंने स्वामी अखंडानंद के सामने भी ये विषय उठाया तो मैंने कहा यदि कैवल्य से मोक्ष ले लें और उस मोक्ष को ही एकमात्र भागवत का प्रयोजन माने तो हमारे भक्त भी वाच्य और प्रयोजन मानते हैं। उनके सिद्धांत से वाच्य भक्ति पदार्थ है और प्रयोजन प्रेम है। भक्ति और प्रेमणी वाच्य प्रयोजने भवतः। तो अब कैवल्य यानी मोक्ष को ही जो हम परम पुरुषार्थ मान लें तो आइए जरा दसम स्कंद के छठे अध्याय में पूतना को मारने के बाद भागवत क्या कह रहा है इस श्लोक पर जरा ध्यान दें। पयाम श्रियासाम अपिवत पुत्र स्नेह युतान्यलम भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद्यखिल प्रदा। यहाँ कैवल्य शब्द के आगे आदि शब्द लगा दिया, यानी तात्पर्य यह है कैवल्य कैवल्यम जो है वो तो आदि सोपानम पहली सीढ़ी है। अभी तो जाने कितनी सीढ़ी चढ़ेंगे तब केशव भगवान के दर्शन कर सकेंगे, पहली सीढ़ी पर नहीं मिलेगा। इसलिए कैवल्यम आदि, कैवल्य में आदित्य है और उसके बाद जो अखिल आनंद है उनका प्रदान करने वाले भगवान हैं। एक तो यहाँ और दूसरा आइए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का 23वां श्लोक अध्याय, जहाँ ऋषिपत्नियों का उद्धार किया वहाँ उनके ऋषि लोग कहते हैं कैवल्याद्याशिषाम पते अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्याद्याशिषाम पते ईशतव्य किमस्मामि ईशश्चैतद् विडम्बनम्। कैवल्यम आदिर यासाम आशिषाम ता कैवल्याद्याशिषः तासाम कैवल्याद्याशिषाम पते। महाराज कैवल्य मात्र प्रयोजन होता मोक्ष तो कैवल्य में आदित्व न करके और आशिषाम में उत्तर दलत्व नहीं स्थापन करते। इसलिए हमारे ज्ञान और मोक्ष, ज्ञानम तत्साध्यम मोक्षस्य, ये दोनों वाच्य प्रयोजनम वयम स्वीकुर्मः। तथापि प्रधानतया भक्ति को वाच्य बनाकर प्रेम को प्रयोजन बनाने वाला भी हमारा वैष्णव सिद्धांत जागरूक है, जग रहा है। कृष्ण प्रेम करो, कृष्ण प्रेम करो, कृष्ण प्रेम करो। तो इस प्रकार कैवल्याद्याशाम पते कैवल्याद्यखिल प्रदाह इत्यादि वाक्यों की संगति नहीं हो सकती। इसलिए गौण रूपेण हम ज्ञान मोक्ष को मान लें और प्रधान रूप से भक्ति प्रेम को भी मान लें, किसी का खंडन करने का हमको अवसर न मिले। और एक व्याकरण का नियम है प्राधान्य व्यपदेशा भवंती, प्राधान्य व्यपदेशा भवंती। जब प्राधान्य जो भक्ति और प्रेम है उनमें ही कहने का हमारा तात्पर्य है। इसलिए यहाँ कैवल्य का भी एक और अर्थ कर दो, एक अर्थ तो हो गया केवला भक्ता तेषाम भावो कैवल्यम अथवा केवला कृष्ण केवला राधिका तयोः भावात्मकम् ऐक्यम् कैवल्यम्। राधा कृष्ण का जो रास में मिलन है गलवाई डाल कर वही कैवल्य है, उस युगल स्वरूप के प्रेमात्मक प्रभु का जिसने दर्शन किया उसने अपने मानव जन्म को धन्य बना लिया। वह किसी संप्रदाय का हो परंतु यह युगल स्वरूप के चरणों में जिसका अखंड प्रेम है और वो भक्ति के द्वारा, ये मत न केवल हम कह रहे हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कैवल्य सम्मत मत सत भक्त योग। ये भक्त योग को कैवल्य लोगों ने भी अपनी सम्मति प्रदान की है। अंत में श्री वल्लभाचार्य जी के पद को बोलता हुआ मैं विराम देता हूँ।